على عباده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم خلفائے راشدین کی فی الحال سیرت پڑھ رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بلکہ انبیاء علیہ السلام کے بعد انسانوں میں جو سب سے بلند رتبہ پانے والے انسان ہیں وہ کون ہیں؟ خلفائے راشدین المہدیین، ٹھیک ہے؟ یہ چار خلفاء، پھر ان کے بعد باقی عشرہ مبشرہ صحابہ آتے ہیں، پھر ان کے بعد جو ہے وہ بدری صحابہ آتے ہیں، پھر ان کے بعد کون آتے ہیں؟ بیت رضوان والے صحابہ آتے ہیں، پھر ان کے بعد باقی اوور آل صحابہ کی جماعت آ جاتی ہے۔ تو یہ ترتیب اللہ رب العزت نے پسند فرمائی ہے، یہی بنائی ہے۔ تو ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ اس کلاس میں فی الحال پڑھ رہے ہیں۔ تو آخری کلاس میں ہم نے بالکل آخری بات جو کری تھی وہ کوئی بتائے گا؟ چلیں، محمد بن کعب صاحب سے۔ جی، محمد کعب، قناعت میں نازل فرمایا، ماشاءاللہ 7 حروف پہ نازل فرمایا، جن کی مطلب قرات ہی لیا جاتا ہے، تو 7 قراتوں کے پہ نازل فرمایا۔ تو پھر اخوان غنی تعالیٰ سے اس بات کا کیا تعلق ہے؟ اخوان غنی تعالیٰ کی سیرت، ماشاءاللہ آج یوسف بھی آئے ہوئے ہیں، آپ بتائیں۔ عثمان غنی عطان کا بھی کا یہ ایک ہمارے خیال میں تو سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ عثمان غنی عطان انہوں نے بھی قرآن مجید کی کمپائلیشن کا جو ہے وہ پروجیکٹ سپروائز کیا یا کیا، ٹھیک ہے؟ اس کی تفصیل شروع ہو چکی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق عطان کے زمانے میں جو مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑائی ہوئی تھی، اس میں بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے تھے، تو عمر فاروق عطان نے آ کر کے فرمایا تھا کہ ہم قرآن مجید کو مصحف کی شکل میں، یعنی ایک کاپی کی شکل میں کمپائل کر دیں، ورنہ لوگوں کے سینوں میں تو یہ ہے، بہت سارے صحابہ نے حفظ کیا ہوا تھا، تو وہ اگر دنیا سے جاتے رہے، جو کہ ہر انسان نے جانا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جاتے رہے تو پھر تو نہیں رہے گا ہمارے پاس محفوظ۔ تو بات ہو گئی تھی اور ایک کمپائل فارم جو ہے وہ بن گئی تھی۔ اس کمپائل فارم کا، جو کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی مبارک میں ہو گئی تھی، اس کا نام رکھ دیا گیا تھا۔ ایک کسی کو اس کا نام یاد ہے؟ اس کو کہتے تھے، ایک لفظ سے پکارا کرتے تھے اس مصحف کو، ٹھیک ہے؟ کیا کہا کرتے تھے؟ مصحف الامام، نہیں امام تو نہیں کہتے تھے، لیکن اس سے ملتی جلتی ایک چیز کہتے تھے، ٹھیک ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ مدر کو، ٹھیک ہے؟ تو وہ تھی، اس کو جو ہے نا، یہ گویا کہ یہ مدر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کا نام دیا جاتا تھا، لیکن اس کے اندر کیونکہ بہت سارے ملٹیپل سپاروں کی شکل میں گویا کہ تھی، لیکن یہ والے سپارے نہیں جو کہ اب ہمارے پاس ہیں، 30 پارے اس شکل میں نہیں تھے، لیکن سپاروں سے مراد یہ ہے کہ صورتوں کو الگ 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 جو ہے نا وہ کاپیز کے اندر کمپائل کیا تھا، تو اس طرح سے بہت ساری مختلف کاپیز تھیں، تو پھر اس سے ترتیب صورتوں کو بھی نہیں پتہ چلتی تھی، لیکن لوگوں کو یاد تھا، تو ترتیب جو ہے وہ یاد، یعنی یادداشت میں تو محفوظ تھی، اس کو کاپی کو دیکھ کر کے پتہ نہیں چلتی تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر یہ چیز دوبارہ سے ریسرفیس ہوئی، یہ والا مسئلہ، کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو مسلم کنگڈم تھی وہ بہت زیادہ پھیل گئی تھی، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آ کر کے اور بھی زیادہ پھیلنا شروع ہو گئی، اور بھی زیادہ دور دور تک پھیل گئی تھی۔ تو پھر کیا ہوتا تھا کہ لوگ جو نئے اسلام میں داخل ہوتے تھے وہ जो पुराने मुसलमान होते थे, अरब आए हुए होते थे, सहाबा आए हुए होते थे, उनसे कुरान मजीद की तिलावत सीख रहे होते थे। तो अब तिलावतें जो हैं वो तो मुख्तलिफ किरातों के ऊपर नाजिल हुई हैं। तो किसी सहाबी ने किसी किरात के अंदर एक्सेल किया हुआ होता था तो वो अपने स्टूडेंट्स को वही किरात पढ़ा रहे होते थे, किसी दूसरे सहाबी ने किसी दूसरी किरात के अंदर जो है वो महारत हासिल करी हुई होती थी तो वो अपने शागिर्द को वही वाली किरात पढ़ा रहे होते थे। अब जब इन शागिर्दों का आपस में वो मुलाकात होती थी तो वो कहते थे, अच्छा जी आप ये वाली सूरत पढ़ करके सुनाएं, ठीक है, तो वो सूरत पढ़ते थे अपनी किरात के हिसाब से जो उन्होंने सीखी थी अपने उस्ताद से। कहते थे अच्छा ये ऐसे तो नहीं पढ़ते, तो वो पढ़ते थे तो वो मुख्तलिफ होती थी, तो कहते थे नहीं तुम गलत पढ़ो, वो कहते थे नहीं तुम गलत पढ़ रहे हो, मैं सही पढ़ रहा हूँ, तुम गलत पढ़ो, मैंने अपने उस्ताद से यही सीखा है, तुमने अपने उस्ताद से गलत सीखा है, इसका मतलब है। तो ये चीजें जो है ना फिर झगड़े लड़ाई की नौबत आ गई थी इसके अंदर, ठीक है। अच्छा अल्लाह ताला ने दिन में अभी अभी डाला थोड़ी देर पहले ही कि अंकल्स के साथ तो हमने शेयर किया ही था, तो आप लोगों के साथ भी चूंकि ये वाली अब बहस हमने जरा तफसील के साथ करनी है इस क्लास के अंदर, तो हम आपको भी जो है ना वो मिसाल के तौर पर दो तीन किरातें सुनाते हैं जो कि आप ही के एक उस्ताद हाफिज कारी हसान साहब ने हमारे साथ शेयर करी थी अपने उस्ताद की आवाज में। उनके उस्ताद कौन है? शेख मूसा बिलाल, ठीक है, जो कि मक्का मुकरमा के अंदर मुकीम है, उनसे ही कारी हसान साहब ने जो है ना ये हिफ्ज भी किया और किरातें वगैरह भी सीखी हैं माशाल्लाह उनसे। तो एक किरात है सूरह शम्स की जो कि इंशाल्लाह अक्सर को तो याद ही होगी, किराआ खल्फ अन हमजा अल कूफी अशेख मूसा बिलाल, तो ये जरा सुनिए, ठीक है, आप लोगों ने इस किरात में याद नहीं किया होगा तो फर्क को नोट कीजिएगा।
بسم الله الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها
इज़ा जल्लाहा वल्लैली इज़ा यख्शाहा, ये कैसे पढ़ रहे हैं, है ना, ये यक्षेहा और जल्लेहा इस तरह से पढ़ रहे हैं तो फर्क है ना।
والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقويها قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها كذب الثمود بطغويها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقباها.
देखा कितना फर्क है। एक और छोटी सूरह हुमजा, तो बहुत ही छोटी सूरह, तो बस ये एक और सुन लेते हैं।
بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
देखा फी
بسم
عمد
الله
ممددة,
الرحمن
लेकिन
الرحيم
फी عمد ممددة, ठीक है। तो अब ये जो मुख्तलिफ किरातें हैं ना, ये कुरान मजीद में कोई बाद की तब्दीली नहीं है कि बाद में इतना 1400 साल गुजर गए तो जो है वो किसी ने कुछ बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया, किसी ने चेंज कर दिया, जैसे तौरात और इंजील के अंदर लोगों ने तब्दीलियां कर दी, नहीं, बल्कि ये नाजिल ही इस किरत में ना में हुआ था कुरान मजीद, ठीक है ना, इस किरत में भी नाजिल हुआ था, इस किरत में भी नाजिल हुआ था, और भी किरात हैं उनके अंदर भी नाजिल हुआ था। और देखें कुरान की प्रिजर्वेशन, हिफाजत क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे ऐसे कुर्रा पैदा फरमा दिए जिन्होंने हर किरात को जो है वो प्रिजर्व किया, इस अंदाज को भी प्रिजर्व किया, इस अंदाज को 1300 साल गुजरने के बावजूद माशाल्लाह हमारे मदारिस के अंदर आज भी जो है वो हजारों की तादाद में जो है ना वो हुफाज तो निकल ही रहे हैं, लेकिन सैकड़ों की तादाद में जो है ये इन किरातों के हुफाज भी निकल रहे हैं। ठीक ना, अल्लाह ताला आप में से भी अक्सर को जो है उसकी तौफीक अता फरमाए। जी,
कुरान पर एक बार नाजिल हुआ तो 7 बार तो नहीं नाजिल हुआ तो
सात
सब
बार नाजिल नहीं हुआ था, लेकिन बड़ा अच्छा सवाल है वैसे। एक बार नाजिल हुआ था लेकिन सात बार तो नहीं नाजिल हुआ था। इसको कैसे एक्सप्लेन करें? नबी अलैहिस्सलाम के कल्बे मुबारक के ऊपर कोई आयत नाजिल होती थी, ठीक है, तो वो आयत जो है ना वो नबी अलैहिस्सलाम पढ़ करके सहाबाए कराम को सुनाते थे, है ना। जैसे कोई आपने वाकया इफ पढ़ा था, हजरत आयशा सिद्दीका था, उनके ऊपर लोगों ने इल्जाम लगाया था, तो नबी अलैहिस्सलाम जो है वो बैठे हुए थे कमरे के अंदर, आयशा सिद्दीका भी मौजूद थी, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु भी मौजूद थे, और जो है वो उनकी अहलिया भी मौजूद थी। एकदम से नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर वो कैफियत तारी हो गई जब वही नाजिल होती थी, ठीक है ना, पसीने आने शुरू हो जाते थे, बहुत आप सरसरम के ऊपर जो है वो बोझ की कैफियत होती थी। फिर जब वो कैफियत खत्म होती थी तो नबी अलैहिस्सलाम फिर तिलावत करके वो सुनाते थे जो आयत नाजिल हुई, ठीक है ना। अब क्या नबी अलैहिस्सलाम उस वक्त 20 टाइम्स रिपीट करते थे कि ये मेरे ऊपर जो नाजिल हुई है ये इस करात में ऐसे पढ़ी जाएगी, इस करात में ऐसे पढ़ी जाएगी, इस करात में ऐसे पढ़ी जाएगी, इस करात में ऐसे पढ़ी जाएगी? नहीं, उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम एक ही करात में पढ़ते थे। वो करात कौन सी करात होती थी?
20 नंबर
जी,
मैसेज नंबर
जिसमें हम पढ़ते हैं। हाँ, ये भी अच्छा जवाब है, जिसमें हम पढ़ते हैं उसको आप हफ्स का नाम भी दे सकते हैं। वो जो है कुरैश की करात होती थी, ठीक है ना। देखिए, कुरैश एक कबीला है और सरजमीन अरब के अंदर बहुत सारे कबाइल, बहुत सारे ट्राइब्स हैं ना, ठीक है ना। तो अब कुरैश कबीला जो है उसकी एक किरत होती थी, एक लहजा, एक अंदाज अरबी पढ़ने का, अरबी बोलने का, ठीक है। तो जो नाजिल होता था ना नबी अलैहिस्सलाम के सीने मुबारक के ऊपर और नबी अलैहिस्सलाम उसको सुनाते थे, वो कुरैश की किरात होती थी, ठीक है ना। अब बाकी किरातें कैसे आ गई कि अब जो है ना उसी को नबी अलैहिस्सलाम जो है या तो सिखाते थे। अब ये तफसील अभी हमारे सामने नहीं है, ये एक पूरा एक एरिया है, पूछेंगे इसके उलमा, इसके जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे, ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल किया, जज़ाकअल्लाह खैर आपने। तो अब जो है वो नबी अलैहिस्सलाम या तो खुद तिलावत करके बताते थे, विच आई डाउट कि ऐसा होता होगा, लेकिन ये कि अब दूसरा कोई कबीला है वो दूसरे लहजे के अंदर बात करता है, तो अब जो है ना वो उसी चीज को जो कि कुरैशी लहजे के अंदर उसने सुनी होती थी, वो जब उसको बात करता था या वो जब उसको पढ़ता था तो वो अपने लहजे में पढ़ता था। जैसे मिसाल के तौर पर आप में से बहुत सारे जो है वो हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे जो है वो यूपी से ताल्लुक रखते हैं, बहुत सारे जो है वो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, बहुत सारे जो है वो बिहार से ताल्लुक रखते हैं, कोई किसी से ताल्लुक है, ठीक है ना। अब एक जुमला जो है वो किताब के अंदर तो लिखा हुआ है उर्दू के अंदर, है ना, उर्दू में लिखा है, इसमें बिहारी उर्दू में तो नहीं लिखा हुआ, राइट, हैदराबादी उर्दू में तो नहीं लिखा हुआ, भोपाली उर्दू में तो नहीं लिखा हुआ, राइट, यूपी उर्दू में, पंजाबी उर्दू में तो नहीं लिखा हुआ। लेकिन जब कोई भोपाली साहब उस बात को पढ़ेंगे और कहेंगे तो वो अपने लहजे में कहेंगे, राइट, ऐसे ही है ना, और जो बिहारी साहब हैं वो अपने बिहारी लहजे में कहेंगे और हैदराबादी साहब अपने हैदराबादी लहजे में कहेंगे, ठीक है ना। तो है तो वो असल में एक ही, लेकिन जब बंदा बोलेगा तो वो उसी लहजे में बात करेगा ना जिस लहजे से वो फेमिलियर है, राइट, जो उसको आता है बोलना, हालांकि जुबान एक ही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना फिर अल्लाह ताला ने इजाजत दी कि मल्टीपल लहजों के अंदर कुरान मजीद की तिलावत की जा सकती है। ऐसा नहीं हुआ जैसे कि आज कोई उर्दू की कोई किताब लिखे और फिर वो जो है ना वो हैदराबादी साहब, खबरदार जो तुमने अपने लहजे में बात करी हो, है, खबरदार तुमने जो है ना वो भोपाली लहजे में बात करी हो, खबरदार तुमने जो है ना वो यूपी के लहजे में, तुमने एक ही लहजे में बात करनी है और बस। अगर तुम किसी दूसरे लहजे में बात करोगे, अगर किसी दूसरे लहजे में मेरी किताब को पढ़ोगे तो तुम्हारी पिटाई होगी, राइट, तुम्हारी पिटाई होगी, यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एन ऑफेंस, तुम्हारी पिटाई होगी, तुम्हें सजा मिलेगी, ठीक है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसा कर सकते थे, ठीक है, कि अगर मेरे बिलवड लहजे कुरैश का लहजा है, मेरे डिसाइडेड लहजा, अगर उसके अलावा तुमने किसी और लहजे में अपनी बस तुम्हें सजा मिलेगी, पिटाई होगी, तुम्हें गुनाह मिलेगा। गुनाह का मतलब क्या होता है? पिटाई होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं किया, और ये अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम के दिल में डाला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह ताला से दुआ करें, गुजारिश करें, रिक्वेस्ट करें कि अल्लाह आप इजाजत दे दें, आप इजाजत दे दें, आप इजाजत दे दें, और अल्लाह ताला ने इसकी इजाजत भी दे दी, ठीक है। तो ये है, अब तो इंशाल्लाह क्लियर हो गया ना, बात समझ में। तो इस तरह से नहीं था कि बहुत सारे डिफरेंट लहजे में नाजिल हो रहा है, और फिर बहुत सारे डिफरेंट लहजे में नबी अलैहिस्सलाम सुना रहे हैं, बल्कि पैरा। तो अब ये जो लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई, तो एक सहाबी थे जो कि आर्मीनिया की महाज के ऊपर जो है ना वो मौजूद।
किताब में भी लिखा वो इसी इख्तलाफ किरच के ऊपर वाकई हदीस भी है
सुनाए
अगर आपको।
पढ़ सुने, माशाल्लाह एक बहुत अच्छा कोई वाकया भी आ गया।
बिल्कुल इसी टॉपिक से मिलती
सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने हिशाम बिन हकीम रजी अल्लाह ताला को सूरतुल फुरकान इस तरह पढ़ते हुए सुना जिस तरह मैं नहीं पढ़ता था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सूरत मुझे पढ़ाई थी, तो करीब था कि मैं उन पर जल्दी में हमला कर देता, ठीक है। उमर फारूक रजी माशाल्लाह, फिर मैंने उन्हें मोहलत दी, जब वो किरात से फारिग हुए तो मैं उनकी चादर को उनके गले में लपेट कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गया। फिर मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे आपने मुझे सूरतुल फुरकान पढ़ाई है, मैंने इन हिशाम इनको सूरतुल फुरकान इसके खिलाफ पढ़ते हुए सुना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिशाम से फरमाया कि पढ़ो, तो उन्होंने इसी तरह पढ़ा जिस तरह मैंने सुना था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इसी तरह से नाजिल हुई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे फरमाया पढ़ो, मैंने ये सूरत पढ़ी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये इसी तरह से नाजिल हुई है, ये कुरान 7 हरफों के ऊपर नाजिल हुआ है, लिहाजा इसमें से जो मुयस्सर हो वो पढ़ो, ठीक है। तो इससे भी जो है ना वो बात ये यही इससे बल्कि तो और ज्यादा जो है वो बात क्लियर भी हो जाती है। ये हदीस पढ़ी थी अभी आपके सवाल के समय, जहन में नहीं आया, को जज़ाकअल्लाह खैर, ये सराहत भी हो गई इसके अंदर कि नबी अलैहिस्सलाम ने फिर लोगों को जो कुरान मजीद सिखाया ना, देखिए ये एक नबी अलैहिस्सलाम एक मदरसा भी तो चला रहे थे ना, ठीक है ना। एक तो होता है रियल लाइफ, ठीक है, जैसे इस वक्त कोई इवेंट हुआ, अब आपने उसके ऊपर कोई जवाब दे दिया, ठीक है ना। ये जो है वो एक सोर्ट ऑफ एकेडमिक सेटिंग नहीं होती, क्लासरूम सेटिंग नहीं होती, ठीक है ना। ये तो रियल लाइफ सेटिंग होती है ना कि भाई ऐसा मामला हुआ, आपने ऐसे जवाब दे दिया, ये जवाब दे दिया, ये फरमा दिया, ये कर लो, ये कर लो। एक होता है एकेडमिक सेटिंग, मदरसा सेटिंग, क्लासरूम सेटिंग भी जिसको कहते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम मदरसा भी चला रहे थे, क्लासरूम सेटिंग के अंदर बिठा करके, हाँ भाई ये ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ठीक है ना। और फलाने को किसी और टाइम में, इंडिविजुअल टाइम्स मिल रहे होते थे लोगों को, आप ऐसे पढ़ें, आप ऐसे पढ़ें, आप ऐसे पढ़ें, ठीक है ना। ये क्या है, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब, व युअल्लिमुहुमुल किताब जो है वो एक सोर्ट ऑफ क्लासरूम सेटिंग के अंदर हो रहा होता था, चाहे वो 1-to-1 क्लासरूम सेटिंग हो, चाहे वो 1-to-many क्लासरूम सेटिंग हो, ठीक है ना। उसमें नबी अलैहिस्सलाम तरीके सिखा रहे होते थे, इसको ऐसे पढ़ें, आप ऐसे पढ़ें, ऐसे पढ़ें, ठीक है ना। तो इस तरीके से फिर जो है वो नबी अलैहिस्सलाम से ये भी बात साबित हुई कि सिखाया भी था, सिर्फ ये नहीं कि एक ही लिखी हुई चीज को जो है वो इस कबीले के लोगों ने इस तरीके से पढ़ लिया, उस कबीले के लोगों ने इस तरीके से पढ़ लिया, तो इस तरह से मुख्तलिफ लहजे हो गए, लेकिन वो चीज भी, उसका भी इनकार नहीं किया जा सकता, ठीक है जी।
नेक्स्ट टाइम तो पैसा तो वापिस करते हैं हमेशा।
आपको इजाजत नहीं है ना, ये जो है वो इस्नाद के साथ होती है, ठीक है। तो अब ये कम इल्मी में ऐसा होता है कि अब लोगों ने जब हमने शेयर किया ना 3 रिकॉर्डिंग्स ग्रुप्स के ऊपर, तो अब ग्रुप के ऊपर तो हर तरह के लोग थे, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो इसका मतलब हम भी ट्राई करते हैं। उन्होंने थोड़ा सा इधर से लिया, थोड़ा सा इधर से लिया, थोड़ा सा इधर से लिया, अब एक नई इतरात बन रही है, सही है। बल्कि मैंने तो एक हेडिंग भी देखी थी, सुनने का तो मौका नहीं मिला, कि पाकिस्तान में कोई नए कारी साहब आए, उन्होंने नए तरीके से कुरान मजीद जो है वो पढ़ना शुरू कर दिया। अब पता नहीं अल्लाह वाला वो क्या कर रहे हैं उसके साथ, मुझे नहीं मालूम, सुनने का टाइम नहीं मिला उसको। अच्छा, तो ये जो झगड़ा लड़ाई वाली कैफियत हुई, तो वो जो सहाबी थे हजरत हुजैफा इब्ने यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु, हुजैफा इब्ने यमान रजी अल्लाह ताला, ये गालिबन वही सहाबी हैं कि जिनकी कब्र जो है ना वो इराक में 1930 में दोबारा से खोदी गई थी, क्योंकि उसको मुंतकिल करने की जरूरत पेश आ रही थी। जो उस वक्त इराक का बादशाह था, तो उसके ख्वाब में आ रहे थे कि हमारे कब्र में पानी आ रहा है, आप हमें इस पानी से बचाएं। तो ये और एक दूसरे सहाबी जो थे ना, इनकी कब्र बिल आखिर बादशाह ने उलमा के मशवरे के साथ जो है वो खुदवाई थी, ठीक है। लेकिन चूंकि पहले से पता चल गया था कि भाई ऐसा ऐसा है, और माशाल्लाह ईमान वाले लोग थे, उनको यकीन था कि सहाबा की कब्र है, इसके अंदर महफूज होंगे सहाबा। तो उन्होंने क्या किया कि बादशाह सलामत, 1930 की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है, तो 19 उन्होंने जो है वो पूरी दुनिया में ऐलान किया, ठीक है, यूरोप में अप टू जापान तक ऐलान किया कि हम ये काम करने जा रहे हैं, जिसको देखना है वो आ जाए, ठीक है। तो यूरोप से, जर्मनी से, यूके से, पता नहीं कहाँ कहाँ से, और जापान तक से जो है ना वो लोग आए, इंडिया से लोग आए, इराक के अंदर, और एक बहुत बड़ा इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। उस जमाने में वीडियो कैमरास वगैरह ईजाद हो चुके थे, तो वो पूरे वीडियो कैमरास वगैरह भी उन्होंने लगाए थे, बल्कि वीडियो कैमरास तो थे उस वक्त, लेकिन जो भी लगाए थे पता नहीं प्रिजर्व नहीं है कहाँ पर है, लेकिन हमने सुना है लोगों से, फोटोग्राफ्स हैं उसकी। तो अब उनके सामने जो है ना वो कब्रें खोली गई थी, और बिल्कुल सही सलामत जो है वो सहाबा किराम की जसूद, यानी उनके जस जो थे, जिस्म जो थे, वो मौजूद थे, फिर उनको वहां से मुंतकिल किया गया था। जी
इस पे लोग
हाँ, ऐसे लोग थे जो कि उसको देख करके ना मुसलमान हो गए थे, हिंदू का एक हिंदू साहब थे वो, तो उनका तो वाकई हमने सुना भी है। जी
अगर उनके चेहरे से कपड़ा हटा के तो ताबी बन
काफी बन सकते
सकते
हैं। तो हाँ, जिंदगी में तो नहीं थे वो। अच्छा, तो हुज़ैफ़ा बिन यमान जो है ना, उन्होंने लोगों को इस तरीके से आपस में क्वारल करते हुए देखा, तो वो जब उनको मौका मिला, जैसे ही वो मदीना तैयबा तशरीफ लाए और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह के पास आए। जी
और बादशाह को जब ख्वाब आया था कि उसे पानी आया तो पानी दिख रहा था।
पानी दिखा था, पानी उस वक्त तवर के अंदर पहुंचा नहीं था, लेकिन बहुत करीब था वो, जैसे कभी दरिया अपना रास्ता चेंज करता है ना, ठीक है, तो वो फिर कब्रों की तरफ जाना शुरू हो गया था। इस तरह से कई दफा हो चुका है। इवन जो ओहद के शुहदा थे ना, तो उनकी जो हम कब्रें जहां पर देखते हैं आज, जब आप ओहद के मुकाम पे जाते हैं, वो कब्रें ओरिजिनली वहां नहीं बनाई गई थी, वो जो है जबल रुमात के इस तरफ बनाई गई थी, यानी टूवर्ड्स किबला, जबल रुमात के इस तरफ थी। वहां पर भी जो है ना वो सैलाबी पानी आना शुरू हो गया था, और वो कब्रें जो है वो खराब होने का अंदेशा था। तो उनकी भी कब्रें 40 साल गुजरने के बाद खोदी गई थी, और फिर उनको उस तरफ मुंतकिल किया गया था, और सबके जो है ना वो लाशें, जिस्म जो था वो बिल्कुल महफूज था। अच्छा, तो हुज़ैफ़ा बिन यमान जो है वो आज़रबाईजान और आर्मेनिया के महाज पर जहाज में जिहाद में मशगूल थे। अच्छा, मेरा इरादा था कि मैं किताब से पढ़ ही लूँ, जो अंकल्स की क्लास में तो वैसे पहले पढ़ चुके हैं, जो लोग उस क्लास में थे वो सुन चुके होंगे, तो उनकी दोहराई हो जाएगी। तो उन्होंने देखा कि लोगों में कुरान करीम की क़िरातों के बारे में इख्तिलाफ हो रहा है, चुनाचे वो मदीना तैयबा वापस आते ही सीधे हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंचे, और जाकर अर्ज किया कि अमीर उलमोमिनीन, कबल इसके कि ये उम्मत अल्लाह की किताब के बारे में यहूदो नसारा की तरह इख्तिलाफात का शिकार हो, आप इस मसले का इलाज कीजिए, ठीक है। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि क्या बात है भाई, तो उन्होंने फरमाया कि मैं आर्मीनिया के महाज पर जिहाद में मशगूल था, वहां मैंने देखा कि शाम के लोग उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु की क़िरात पढ़ रहे हैं, जो अहले इराक ने नहीं सुनी थी, और अहले इराक जो है वो अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की क़िरात पढ़ रहे हैं, जो अहले शाम ने नहीं सुनी, ठीक है। यानी ये लोग जो थे, तो ये दोनों ही कुरैशी थे ना, लेकिन इन दोनों की क़िरात के अंदर भी मुख्तलिफ इख्तलाफ था, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो कुरैशी किरात जो है वही मुख्तलिफ हो, लेकिन जो भी उसकी तफसीलात थी वो अहले किरात जो है वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो इसके नतीजे में एक दूसरे को काफिर करार दे रहे हैं, भाई तुम अल्लाह का कलाम जो है ना वो गलत पढ़ रहे हो, वो कह रहे हैं तुम अल्लाह का कलाम जो है वो गलत पढ़ रहे हो, और इसका मतलब है कि तुम काफिर हो, तुमने कुरान के अंदर तब्दीली कर दी, कुरान के अंदर तब्दीली करना आपको पता ही है कुफर है, ठीक है। तो ये इस तरह से इनके पास आए, ठीक है। अब थोड़ा सा एक इम्तिहान क्विज उन लोगों का जो कि क्लास में इस वाली बात को पहले सुन चुके हैं, बच्चे भी थे उनमें, बड़े भी थे, तो इस वाकये से हमने कुछ लेसन्स लिए थे, ये जो अभी हमने एक पैराग्राफ पढ़ा, इससे ना हमने कुछ असबाक अपने लिए डिराइव किए थे, ठीक है। वो किसी को याद है? 1 2 3 इससे पहले कि अंकल बता दें आप लोग बता दें।
आपने कहा था कि
मेन जिम्मेदारी जो है ये सिर्फ ये नहीं है कि खलीफा साहब सारे काम करेंगे, तमाम लोग जो है उनको भी फिक्र करनी है और उनके हर एक साथ उसकी मदद करनी है।
चले माशाल्लाह, एक बात उनको बहुत अच्छी याद रही कि एक बात उस वक्त हमने ये इससे अहस करी थी या मैं लेसन ड्राइव किया था कि इन्होंने जो है ना वो एक प्रॉब्लम देखी तो उस प्रॉब्लम की जो है वो फिक्र करी, ठीक है। ये नहीं कहा कि भाई मैं अक्सर कहता हूँ पंजाबी में ऐसा नहीं आती है मुझे पंजाबी, मैनू की मुझे क्या यार खलीफा था मैं ना, बस वो कर लेंगे काम, ठीक है ना। वो उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने कहा नहीं भाई एक प्रॉब्लम है मेरे सामने, ये मसला आया है तो मैं इसको इग्नोर ना करूं, मैं आंखें बंद करके जो है ना वो ये ना समझू कि इट विल गो अवे ऑन इट्स ओन, खुद से नहीं चली जाएगी, ठीक है ना। तो ही ओन द प्रॉब्लम, ठीक है ना। अच्छा एक और भी बात उसमें करी थी, जितना याद आया तो मैंने लिखा। हाँ एक और भी बात करी थी कि एक तो प्रॉब्लम को ओन किया ना, ये सारा जो है वो खलीफा साहब के हवाले ना नहीं कर दिया। अच्छा दूसरी बात ये थी कि इनको भी पता था, बल्कि इनको क्या, इनसे पहले अबू बकर सिद्दीक रहता उनको भी पता था और उमर फारूक रहता उनको भी पता था और जैद बिन साबित रहता उनको भी पता था कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कुरान की हिफाजत का खुद वादा फरमाया हुआ है, राइट। ये जो आयत है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हम ही ने इसको नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं, क्या ये पहले कुरान में नहीं थी आयत, अबू बकर सिद्दीक के जमाने में कुरान में नहीं थी। तो वो कहते हैं कि नहीं अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा लिया ना, मुझे क्या जरूरत है हिफाजत करने की, राइट, मुझे कॉपी कंपाइल करने की और अब आपको कंपाइल करने की क्या जरूरत है, अल्लाह है ना हिफाजत करने वाला, नहीं ठीक। ये नहीं कहा ना अबू बकर सिद्दीक ने किसी और ने कहा, ठीक है, बल्कि भाई अल्लाह ने जो काम करना है वो तो करना है, लेकिन हम क्यों ना उसका वसीला बन जाए, राइट, हम जो है उसका सबब बन जाए तो हमें सवाब मिलेगा ना। करना तो सब अल्लाह ही नहीं है, सिर्फ कुरान को थोड़ी अल्लाह ताला ने महफूज करना है, बाकी काम भी तो अल्लाह नहीं करना है, तो हम क्यों करते हैं काम, ठीक है ना। वो मुफ्ती साहब से बात हो रही थी, कहने लगे कि बड़ी अच्छी बात जो है वो समझ में आई कि दावत का काम जो है ना वो हमने करना ही है, हालांकि अल्लाह ने उसकी जिम्मेदारी ली हुई है कि तुम किसी को हिदायत नहीं दे सकते, मैं ही हिदायत दूंगा। तो लोग कहते हैं कि फिर हम क्यों दावत का काम करें, तो उसके ऊपर हम यही कहें ना लोगों को कि भाई अल्लाह ताला ने तुम्हारे खाने पीने की भी तो जिम्मेदारी ली हुई है ना, तो तुम क्यों भाग दौड़ करते हो खाने पीने के लिए, है रेस्टोरेंट जाके खाना खरीद के लेकर के आते हो, दफ्तर जाकर के खाने के लिए कमा करके लेकर के आते हो और शॉपिंग करते हो, भाई अल्लाह ने खिलाना है बैठे रहो एक जगह पर, ठीक है ना, और लेट द खाना कम लेट द बिल्स कम, लेट द ग्रोसरी कम, लेट एवरीथिंग कम, अल्लाह ताला की तरफ से आएगा, क्यों भागते दौड़ते फिरते हो इधर उधर, राइट। तो खाने पीने में तो भागना दौड़ना है और दावत का काम करने में अल्लाह करेगा, सही है भाई, दोनों काम एक तरह से करो या दोनों काम दूसरी तरीके से करो, ठीक है ना। तो यही मामला जो है वो कुरान की हिफाजत का भी है, तो अपना काम तो हमने करना ना, ये हमें इसका मुकल्लफ बनाया गया है। और आखिरी बात ये कि इन्होंने जब देखा कि मुसलमान एक दूसरे को काफिर करार दे रहे हैं, तो इनको ये बात भी पता थी कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि किसी ने अगर किसी दूसरे को काफिर कहा हालांकि वो काफिर नहीं था, तो उसका कुफर जो है ना वो उसके कहने वाले के अपने ऊपर लौटता है, कहने वाला खुद काफिर हो जाता है, उसके कहने से कोई दूसरा काफिर नहीं होता, अगर वो कुफर का कोई काम नहीं कर रहा तो वो काफिर नहीं होता, लेकिन इसके उसको काफिर कहने की वजह से कहने वाला काफिर हो जाएगा, ठीक है। तो इनको मुसलमानों के ईमान की फिक्र हुई कि भाई इस तरीके से मुसलमान दायरे ईमान से खारिज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इस फिक्र में फिर वो हजरत उस्मान गनी अतान के पास आए और इस फिक्र को उनके सामने पेश किया, बैठे नहीं रहे इसके ऊपर, ठीक है ना। तो एक दूसरे की ईमान की फिक्र करना ये सबसे बड़ी खैर ख्वाही है, सबसे बड़ी नसीहत है, और हमारा दीन क्या है, अद्दीनुन नसीहा, ये तो सरासर खैर ख्वाही है, ठीक है ना। तो सिर्फ ये नहीं कि वो भूखा बैठा हुआ है तो उसको खाना खिला देना, ये भी खैर ख्वाही है, राइट, कोई परेशानी में है उसकी परेशानी को दूर कर देना, ये भी खैर ख्वाही, लेकिन सबसे बड़ी खैर ख्वाही क्या है, ईमान की फिक्र करना एक दूसरे की, ठीक है जी। या ए अकल व तवक्कल माशाल्लाह, ठीक है कि भाई वो पहले वाली जो बात थी उसके अंदर ये कि भाई अल्लाह ताला पे तवक्कुल बाद में करो, पहले जो है वो असबाब इख्तियार करो, मेहनत करो, कोशिश करो, फिक्र करो, ठीक है। तो देखिए सहाबा कराम जो थे ना, इन्होंने दीन को पूरा समझा था, ठीक है ना, कि भाई तवक्कुल का क्या मतलब होता है, अपनी एफर्ट का क्या मतलब होता है, खैर ख्वाही करने का क्या मतलब होता है, ठीक है, और इसके मुताबिक वो पूरे दीन के ऊपर अमल करते थे। तो ये उस्मान गनी के पास आए तो उस्मान गनी ने, फरमाते हैं कि पहले ही इस खतरे का एहसास कर चुके थे, उन्हें ये इतला मिली थी कि खुद मदीना तैयबा में भी ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं कि कुरान करीम के एक उस्ताद ने अपने शागिर्दों को एक किरात के मुताबिक पढ़ाया था और दूसरे उस्ताद ने अपने शागिर्दों को दूसरे किरात के मुताबिक पढ़ाया था। तो अब जब उनके शागिर्द इवन मदीना तैयबा के अंदर भी एक दूसरे से मिलते थे ना, तो उनमें भी ये इख्तलाफ आ जाता था, हत्ता कि कभी कभी तो इवन उस्तादों के दरमियान भी इख्तलाफ हो जाता था, क्योंकि उस्ताद भी जो थे उन्होंने भी अपने उस्ताद से सीखा था। तो अपने यानी जो ऊपर के उस्ताद थे वो तो सहाबा कराम थे, उनको तो पता होगा बातों का, लेकिन जो उनके स्टूडेंट्स थे उनको तो सारी बातों का भी पता नहीं था ना। तो इख्तलाफ जो है वो उस्तादों तक भी पहुंच जाता था और वो भी एक दूसरे की करात को गलत करार देते थे। जब हजरत हुजैफा बिन यमान रतानों उन्होंने भी इस खतरे की तरफ तवज्जो दिलाई तो उस्मान गनी रतान ने फिर मशवरा किया, जो सीनियर जलीलुल कदर साहबा मौजूद थे उनको जमा किया और उन सब के सामने ये बात रखी कि भाई ये मसला पेश आ रहा है, आपकी क्या राय है, ठीक है ना, आप क्या एडवाइस करते हैं इसके ऊपर। तो उन लोगों ने भी जवाब दिया कि आप बताएं कि आप क्या इस बारे में राय रखते हैं। उस्मान गनी ने फरमाया कि भाई मेरी राय तो ये है कि सब लोगों को जो है ना वो हम एक कॉपी के ऊपर जमा कर दें, ठीक है, ये तो पहले से जमा कर चुके थे, अब कौन सी वाली कॉपी पे जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले जो जमा किया था वो वाली एक कॉपी थी और उसके पास एक्सेस जो है ना, उस कॉपी तक एक्सेस जो है वो सिर्फ मदीना तैयबा के लोगों का था। अब जो है मुसलमान ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर तरफ फैल चुके थे, तो उन लोगों को भी तो जमा करना था ना, अब तो उन लोगों को किस कॉपी के ऊपर जमा करेंगे। तो फिर ये फैसला हुआ कि हर एक को जो है ना वो कॉपी बना करके भेजी जाए, ठीक है। तो अब जो है ना उस्मानी रज़ी अल्लाह अन्हु उन्होंने लोगों को जमा करके यानी आम लोगों को जमा करके खुतबा दिया और फरमाया कि तुम लोग मदीना तैयबा में मेरे करीब होते हुए, यानी मैं अमीरुल मोमिनीन हूं और मेरे करीब होते हुए तुम लोग कुरान करीम की किरातों के बारे में एक दूसरे की तकजीब और एक दूसरे से इख्तलाफ कर रहे हो, तो जाहिर है कि जो लोग दूर रहते हैं वो तो और ज्यादा इख्तलाफ करते होंगे, ठीक है ना, लॉजिकल इन्फरेंस कंक्लूजन ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, तो और लोग और दूर रहने वाले तो और भी ज्यादा इख्तलाफ करते होंगे, लिहाजा तमाम लोग मिलकर कुरान करीम का ऐसा नुस्खा तैयार करें जो सबके लिए वाजिबुल इक्तदा हो, ठीक है, सबके लिए यानी दूर दराज रहने वालों के लिए भी वाजिबुल इक्तदा। अच्छा अब क्या हुआ जब उन्होंने कहा कि सब लोग मिलकर के करें, तो अब सब दौड़ना शुरू हो गए इधर से उधर, हैं, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, उधर से नुस्खा तलाश कर रहा है, इधर से नुस्खा तलाश कर रहा है, नहीं, ये जो हजरत ने फरमा दिया, फिर उसके बाद हजरत ने खुद एक टीम बनाई, ठीक है ना, टीम बनाई और टीम को जो है वो फिर रिसोर्सेज भी दी, ठीक है। तो प्रोजेक्ट जो होता है ना वो इस तरह से होता है कि प्रोजेक्ट के लिए पहले आपको एक प्रोजेक्ट टीम की जरूरत पड़ती है और फिर उस प्रोजेक्ट टीम को आप कुछ टूल्स देते हैं, कुछ रिसोर्सेज देते हैं जिनकी मदद से फिर वो प्रोजेक्ट को करती है। तो सबसे बड़ा और इसके लिए कौन सी वाली रिसोर्स चाहिए थी, इस टीम को कौन सी रिसोर्स चाहिए थी, क्या काम,
पहले जो कुरान लिखा हुआ जरूरी
हाँ, जो सबसे बुनियादी रिसोर्स जिसकी इनको जरूरत थी वो उम नुस्खा था जो कि अबू बकर सिद्दीक के जमाने में तैयार हो चुका था, ठीक है ना, उसके ऊपर ही इन्होंने बिल्ड करना था ना अपने प्रोजेक्ट को। तो उन्होंने हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला के पास बंदे भेजे कि भाई आप अपना नुस्खा जो है ना वो हमारे हवाले कर दें। तो पीछे हम बात कर चुके हैं कि अबू बकर सिद्दीक के जमाने में जो नुस्खा बना था वो उनके पास रहा, फिर उनके इंतकाल के बाद उमर फारूक रजान के पास आ गया, फिर उनकी शहादत के वक्त उन्होंने अपनी शहादत से पहले पहले उसको अपनी बेटी हफ्सा रजान के पास भिजवा दिया था, ठीक है। उस्मानी रतान ने जब मंगवाया तो हफ्सा रजान ग्लैडली बड़ी खुशी के साथ उन्होंने इस नुस्खे को उस्मानी रतान के पास भेज दिया, ठीक है। तो उस्मानी रतान ने चार सहाबा की जमात बनाई, ठीक है, उसमें सबसे पहले तो वही हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु थे और दूसरे जो थे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह के बेटे, और सईद इबन अल आस रजी अल्लाह तआला अन्हु, अम्र इबन अल आस रजी अल्लाह तआला अन्हु के भाई सईद इबन अल आस रजी अल्लाह तआला अन्हु, और हजरत अब्दुलरहमान बिन हाशिम बिन हारिस बिन हिशाम, ठीक है। तो ये चार जो है ना इन पे मुश्तमिल एक टीम बनाई और इसको इस काम पर मामूर किया गया, यानी ऑर्डर किया गया इस काम का कि कि वो हजरत अबू बकर रतान के सहीफों से नकल करके ऐसे कई मसाहिफ तैयार करे जिनमें सूरतें भी तरतीब के साथ हो, ठीक है, सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह निसा, इस तरह से तरतीब में। अच्छा, इन चार में से जो हजरत जैद बिन साबित रतान थे, मजे की बात ये कि वो कुरैशी थे ही नहीं, राइट, वो थे अंसारी सहाबी, ठीक है। तो बाकी तीनों हजरत कुरैशी थे, इसलिए उस्मान रज़ी अल्लाह ने उनसे फरमाया कि जब तुम्हारा और जैद का कुरान मजीद के किसी हिस्से में कोई इख्तलाफ हो जाए कि उसको कैसे लिखना है, उसकी क़िरात जो है वो कैसे जमा करनी है उस कॉपी के अंदर, तो तुम जो है ना वो कुरैशी तरीके के ऊपर उसको लिखना, जैद कुरैशी नहीं है, जैद जो है वो अंसारी है, क्योंकि कुरान करीम उन्हीं की जुबान यानी कुरैश की जुबान में ही नाजिल हुआ है। बुनियादी तौर पर असल में मैंने जो जवाब दिया था ना उनको, वो इसी वाली बात की बुनियाद पर जवाब दिया था कि जो नाजिल हुआ था ना वो एक किरात के ऊपर नाजिल होता था, फिर बाद में नबी अलैहिस्सलाम या तो सिखाते थे जैसे आपकी भेजी हुई हदीस से पता चला, या ये कि जो कबीले के लोग थे वो अपने लहजे में उसको पढ़ रहे होते थे। बुनियादी तौर पर यह काम मस्कूरा चार अफराद के ही सुपुर्द किया गया, लेकिन फिर दूसरे सहाबा को भी उनकी मदद के लिए साथ लगा दिया, ठीक है ना, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये, तो टीम को जो है फिर एक्सपैंड भी करने की जरूरत पेश आई, तो टीम को एक्सपैंड भी किया जा सकता है, ठीक है, तो उसको एक्सपैंड किया गया, बड़ा किया गया, और इनकी तादाद 12 तक पहुंच गई। हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु जो कि सबसे मशहूर कारी कुरान उबई बिन काब, हजरत कसीर बिन अफलाह रज़ियल्लाहु, मालिक बिन अबी आमिर रज़ियल्लाहु, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु जैसे हजरात को भी इसमें शामिल कर दिया गया। इन हजरात ने किताबत कुरान के सिलसिले में ये काम किए, ठीक है, हम मुफ्ती तकी उस्मानी दामकातुम की किताब उलूमुल कुरान में से पढ़ रहे हैं। पहला काम ये किया कि अबूबकर सिद्दीक के जमाने में जो नुस्खा तैयार हुआ था तो उसमें सूरतें तरतीब में नहीं थी, है ना, वो तो लोगों को याद थी तरतीब में लेकिन लिखी हुई शक्ल में तरतीब में नहीं थी, तो इन हजरात ने तमाम सूरतों को तरतीब के साथ एक ही मसहफ के अंदर, यानी जो अब हम एक मसहफ में कुरान पढ़ते हैं, तो ये एक मसहफ अब बना, ठीक है। कुरान करीम की आयात, दूसरा काम ये किया, कुरान करीम की आयात इस तरह लिखी कि उनके जो रस्मुल खत यानी उनका जो फॉन्ट, जैसे कंप्यूटर के जमाने में उसको फॉन्ट कहते हैं, ठीक है, तो रस्मुल खत में तमाम मुतवातर किराअतें समा जाएं, ठीक है, इसीलिए उन पर ना नुक्ते लगाए गए और ना जेर जबर पेश की हरकात लगाई गई। नुक्ते भी उस वक्त अरबी जुबान में मौजूद होते थे, जेर जबर पेश भी मौजूद होते थे, लेकिन लगाए नहीं जाते थे। अच्छा, कोई बताएगा, किसी को याद है क्यों नहीं लगाए जाते थे? कोई और जैद,
और अरबों को बेअदबी
अरबों को बेअदबी लगती थी या ज्यादा प्रॉपर वर्ड उसके लिए? हाँ,
उनकी जबान की तो पता था हाउ टू प्रोनाउंस इट लाइक हमें उर्दू पढ़नी आती है थोड़ा सा तो उनको अरबी पढ़नी आती है थोड़ा सा
उनको जो है ना वो क्या, दे विल फील ऑफेंडेड, तो
नहीं समझ
कि भाई तुम मुझे जो है वो, जैसे आप उर्दू का कोई एक जुमला लिख करके किसी को दें और उसके ऊपर हर जो है ना जेर जबर पेश सब लगा करके दें, तो पढ़ने वाले को तुम क्या समझो, मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती क्या समझते हो, तुमने मुझे क्या समझ रखा है, ये कहेंगे ना, आप ऑफेंडेड फील होंगे, सही है। तो इसी तरह अरब जो है ना वो ऑफेंडेड फील होते थे अगर कोई जो है ना वो नुक्ते और जेर जबर पेश लगा कर, भाई मैं पढ़ने ही आती है तुम्हें, हमें यानी कहते ना उंगली पकड़ के चलाने की जरूरत नहीं है, मुझे चलना आता है, सही है, तो इस तरह का मामला था। तो अब जो है ना इसमें चूंकि अब ये अजमियों के लिए भी बनाया जा रहा था, तो इसमें लेकिन अब खैर इसमें भी एक्चुअली नहीं लगाए गए, क्योंकि ये बेसिकली जो है वो उस्तादों के लिए बनाया जाता, और उस्ताद जो थे ना वो सारे के सारे अरब थे, तो इसमें भी नुक्ते नहीं लगाए गए, जेर जबर पेश नहीं लगाए गए, ताकि इसे तमाम मुतवातिर किरातों के मुताबिक पढ़ा जा सके। मसलन नन शुरुहा और नुन शिजुहा दोनों तरह पढ़ा जा सके। तो इसको जो है ना वो मैं सोच ही रहा था कि अब हमें कुछ व्हाइट बोर्ड भी अरेंज करने हैं, आप लोग भी सब इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाइट बोर्ड का क्या वैसे मशवरा है? मेरा ख्याल ये था कि अगर मुख्तलिफ लोकेशन होती हैं तो व्हाइट बोर्ड साथ साथ लिए लिए फिरें, या ये कि वही ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड और प्रोजेक्शन का सिलसिला करें
प्रोजेक्ट
क्या,
वाला होता है जो स्क्रीन पे लिखते थे
स्क्रीन पर
व्हाइट
लिखने
बोर्ड
वाला
पे
और
लिखते थे प्रोजेक्ट वाला
उसको
होता
प्रोजेक्ट कर दें, तो वो
स्क्रीन
भी
पे
देख लेंगे
लिखते
और मौजूद लोग भी देख लेंगे, तब इस तरह की चीजें जो है ना वो लिखने में ज्यादा उसमें कन्वीनियंट हो जाएगा। तो नून नून शीन रा और दो चश्मी हा और अलिफ, इसमें ना कोई नुक्ता लगाया गया, इसमें ना कोई जेर जबर पेश लगाया गया। अब इसको जो है ना पढ़ने वाला नन शुरुहा भी पढ़ सकता है और नुन शुजुहा भी पढ़ सकता है, ठीक है ना।
ठीक
तो इन दोनों के मफहूम में कोई खास फर्क नहीं है, पर फर्क है ही नहीं, ठीक है। और ये दोनों कहलाते हैं दुरुस्त हैं, सही है। और तीसरा काम किया कि कुरान करीम का मुकम्मल मेयारी नुस्खा जो पूरी उम्मत की इज्तिमाई तस्दीक से मुरतब किया गया हो, वो सिर्फ अब तक एक ही था। इन हजरात ने इस नए मुरतब मसहफ की एक से जायद नकलें तैयार की। एक दफा एक मसहफ बना लिया, अब उसकी फोटो कॉपी, जमाने में देख करके लिखने को फोटो कॉपी कहा जाता होगा। आमतौर से मशहूर ये है कि हजरत उस्मान तआला ने पांच पांच मसहफ तैयार करवाए थे, लेकिन अबू हातिम सजिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है कि कुल सात नुस्खे तैयार किए गए थे। तो सात सूबे थे, तो सात नुस्खे, सात सूबे कौन कौन से थे, इस पे बात खत्म करते हैं। अगर आप लोग बता दें सात प्रोविंसेस उस वक्त कौन कौन से थे, एक एक बताएं। आप एक बता दें, शाम एक प्रोविंस था,
मतलब
मक्का मुकरमा एक प्रोविंस था,
इसमें
मिस्र एक प्रोविंस था, ठीक है, एक दो तीन, मदीना मुनव्वरा एक प्रोविंस था, बसरा एक प्रोविंस था माशाल्लाह, कूफा जो है वो एक और प्रोविंस था, और एक मेजर प्रोविंस रह गया बड़ा अहम प्रोविंस, बच्चे बता दें यमन, माशाल्लाह, ठीक है। तो यमन हो करके सात मुकम्मल हो गए। तो इस तरह से जो है वो सात नुस्खे बनाए गए और फिर उन सातों को जो है वो सात प्रोविंसेस में भेजा गया। बाकी जितना है वो इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।